हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीपात्राय निरुवाच। एवं व्यवस्थितो बुद्धया स्माधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यम् प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री पात्राय निवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार व्यवस्थित स्थिर बुद्धया बुद्धि से समाधाय केंद्रित करने के लिए मनः मन को हृदि हृदय में या चेतना में जजाप जप किया परमं परम जाप्यम उस मंत्र को जिसे उसने महान भक्तों से सीखा था। प्राक जन्मनि पूर्व जन्म क्षमा जाते पूर्व जन्म में अनुशिक्षितम अभ्यास किया हुआ अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। दोहराएगा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तात्पर्य ऐसे स्मरण का वर्णन भगवत गीता में इस प्रकार हुआ है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदना। पूर्वाभ्यासेन तेनेव रियते राविशो अपि सा। इन श्लोकों में है आश्वस्त किया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में भगवान को स्मरण करेगा। जैसा कि बाद में बताया जाएगा, गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न नामक राजा थे, किंतु किन्हीं कारणों से वे अगले जन्म में गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्त्रोत्र स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। यतते च ततो भूय संसिद्धो गुरु नंदना। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहां यह सिद्ध हो जाता है क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे, जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि, प्रकर असम सद्धु या नरसिंह स्त्रोत के जाप का अभ्यास करे। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना ना प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को ना भूल सकेगा। निसंदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन भी हो तो भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरणार्थ अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवावस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उचक्का बन गया। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतएव हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। ओम अज्ञान्तिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सहजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा निवृतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपीका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमः विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्णा। तो श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। एक बार एक शिष्य ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद परमात्मा हृदय में खड़े हैं कि बैठे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ही स्टैंडिंग, वो खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हम उनकी ओर मुड़ेंगे, कब हम अपना मुख उनकी ओर करेंगे। तो यहां पे भी प्रभुपाद जी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं कि मनुष्य को सिद्धि प्राप्त कराने के लिए कृष्ण एक और अवसर प्रदान करते हैं। तो ये जो भगवान का गुण है और भगवान के शुद्ध भक्तों का गुण है, एक अवसर प्रदान करना, सभी जीवों को भगवान का आश्रय लेने के लिए, ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। तो अगर भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ये गुण ना हो तो शायद इस कलयुग में कोई ऐसा होगा जो भगवान का आश्रय ले पाएगा। तो जैसा आचार्य बताते हैं कि कृष्ण जब गजेंद्र के इन स्तुतियों को सुन रहे थे जो कि वो प्रार्थना कर रहे थे, तो भी ये गजेंद्र की प्रार्थनाएं खत्म भी नहीं हुई थी तो कृष्ण दौड़ने लगे गरुड़ पे बैठ के गजेंद्र को इस संकट से बाहर निकालने के लिए। और कृष्ण गरुड़ जी को तेजी से दौड़ने के लिए कह रहे थे, तो गरुड़ जी भगवान की इच्छा के अनुसार उतना तेजी से नहीं दौड़ पा रहे थे, लेकिन वो अपना पूरा प्रयत्न कर रहे थे और भगवान और उनसे तेजी से दौड़ने के लिए कह रहे थे। तो गरुड़ जी बेहोश हो गए और भगवान ने गरुड़ जी को अपने कंधे पे बिठा लिया और दौड़ने लगे तो दोनों भक्तों को बचा रहे थे, एक तरफ से गरुड़ जी को और दूसरी तरफ से गजेंद्र को। और अभी गजेंद्र की प्रार्थना खत्म नहीं हुई थी और भगवान वहां पहुंच गए। तो यह है भगवान का एक अवसर देना। और प्रभुपाद जी का यह कहना कि परमात्मा हृदय में खड़े हैं और खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि ये जीव कृष्ण भूलिया जीव, जिसके पास चुनाव है माया या कृष्ण का, उसमें से वो किसका चुनाव करता है। तो जब वो कृष्ण को भूलता है तो वो माया को याद करता है, जब वो माया को भूलता है तो कृष्ण को याद करता है। वो दोनों को एक साथ लेके नहीं चल पाता, उसको किसी न किसी एक को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है। इसीलिए जीवात्मा का स्वभाव जो बताया गया है वो एक कॉपरेटर का है कि हम सब भगवान से सहयोग करने के लिए बने हैं। भगवान ने सभी जीवात्माओं की सृष्टि उनसे सहयोग करने के लिए की है। तो कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि जब हम भगवान से सहयोग करते हैं तो हम अपने आप को विशेष मान बैठते हैं कि हम भगवान के साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान के साथ सहयोग करना भगवान की एक कृपा है, ना कि हमारी महानता। तो भगवान हमें अपने से सहयोग करने का जो अवसर दे रहे हैं वो उनकी एक कृपा है हमारे ऊपर। जैसे जब राम और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज करते हुए जा रहे थे और करते करते वो वहां पहुंचे जहां सुग्रीव और अन्य बानरों के साथ छुपे थे, तो सुग्रीव ने देखा कि ये जो दो आ रहे हैं तपस्वी मनुष्य और जिनके हाथ में धनुष बाण भी हैं, तो सुग्रीव ने सोचा कि ये शायद वाली के कोई भेजे हुए दूत हैं जो सुग्रीव का वध करने के लिए आ गए हैं यहां पर। तो सुग्रीव को हर जगह उनके शत्रु वाली नजर आते थे। तो हनुमान जी को बोला सुग्रीव ने कि जाओ जाकर पूछो ये कौन लोग हैं, इनका परिचय लो। तो हनुमान जी आए पास में और पास आके पूछते हैं कि आप दोनों कौन हो, कहां से आए हो, क्या उद्देश्य है आपके यहां आने का। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राम, और ये अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए इस वन में आए हैं, और ये मुझे अपना भाई कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे थे कि ये मुझे अपना भाई कहने का एक अवसर दे रहे हैं। तो भगवान से सहयोग करने में हमारी कोई विशेषता नहीं, ये भगवान की कृपा है कि वो हमें अपना पार्टनर बना लेते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो इस संसार में कोई भी किसी की पार्टनरशिप एक्सेप्ट नहीं करता जब तक कुछ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों पार्टीज ना दे। लेकिन हमारे बिना किसी योगदान के भगवान हमें अपना पार्टनर बनाने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, दोनों हाथ फैलाए। तो ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि वो हमें अवसर दे रहे हैं उनके सहयोगी होने का। तो भक्तों के लिए भगवान कृष्ण का एक बहुत विशाल हृदय है, जब कृष्ण हस्तिनापुर आए दुर्योधन को समझाने के लिए कि वो युद्ध ना करें और वो कोई शांति समझौते को स्वीकार कर लें, तो जो महात्मा विदुर थे उन्होंने कृष्ण को कहा कि ये दुर्योधन किसी भी प्रकार से नहीं मानेंगे, आप कुछ भी कर लो, मैंने भी बहुत प्रयत्न कर लिया है, जितना मर्जी आप कुछ कर लो, ये दुर्योधन बहुत हठी है और बहुत गर्वित है, ये नहीं स्वीकार करेगा आपके किसी भी प्रस्ताव को। तो महात्मा विदुर रोकने लगे कृष्ण को कि वो ना जाए दुर्योधन के पास। तो कृष्ण कहते हैं उस समय विदुर जी को, ये मेरा कर्तव्य है लोगों को एक अवसर प्रदान करना बदलने का, तो चाहे वो बदले या ना बदले, लेकिन मैं अपना कर्तव्य करना चाहता हूं उन्हें एक अवसर प्रदान करके बदलने के लिए। तो ये भगवान का एक विशाल हृदय है कि वो पूरी मानव जाति को, प्रत्येक जीव को अवसर प्रदान करते हैं बदलने के लिए, और एक ही बार नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तब तक जब तक हम बदलना चाहें। तो ऐसी पेशेंस किसी में नहीं नजर आएंगी। जब प्रचारक प्रचार के लिए जाते हैं और अगर एक दो बार तीन बार नहीं सुनता कोई तो धैर्य खो बैठते हैं कि ये समझने वाला नहीं है, ये बदलने वाला नहीं है, छोड़ देना चाहिए, ये गीली घास है, हम गिरेंगे इसके ऊपर तो हम ही बुझ जाएंगे, तो बजाय कि हम इसे जला सकें हम खुद ना बदल जाए इसलिए दूर रहा जाए इसे। लेकिन भगवान के धैर्य की कोई सीमा नहीं है, वो एक के बाद एक दुर्योधन को अवसर देते जा रहे थे बदलने के लिए, यहां तक कि रावण को भी प्रभु राम अवसर देते गए अंत समय तक। जब विभीषण आए पहली बार प्रभु राम से मिलने के लिए, जब उन्होंने सुना कि स्वयं भगवान राम सेना लेकर आए हैं, तो सभी बानर कितने भयभीत हो गए कि ये तो असुरों का आक्रमण हो गया, ये आ गए आकाश मार्ग से हमको मारने के लिए, और सबने पत्थर उठा लिए बड़े बड़े। तो हनुमान जी ने पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, और जब बताया भगवान राम को कि ऐसे विभीषण आए हैं रावण के भाई और आपसे मिलना चाहते हैं, आपका शरण लेना चाहते हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि विभीषण क्या, अगर रावण भी इस समय आए तो मैं उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार। तो भगवान एक के बाद एक हमें अवसर प्रदान करते रहते हैं। एक दृष्टि से देखेंगे तो भगवान की जो शक्तियां हैं उसमें ज्ञान शक्ति से बड़ी करुणा शक्ति है, और ये जो भगवान की करुणा शक्ति है ये ज्ञान शक्ति को भी ढक देती है। तो ज्ञान शक्ति कहती है कि इसे और अवसर नहीं देना चाहिए, लेकिन करुणा शक्ति उस ज्ञान शक्ति को कवर कर देती और वो और अवसर देने के लिए बाध्य करती। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए डिसाइपल, तो प्रभुपाद ने नीचे बैठ जाओ, वो नीचे बैठ गया और प्रभुपाद भी घुटने के बल नीचे आ गया आसन से, और एक चीठी जा रही थी तो उस घूमती हुई चीठी को और इशारा करते हुए प्रभुपाद कहते हैं, इफ वी कैन टीच पाथ गो बैक टू गॉड टू इवन दिस एंड देन वी शुड अंडरस्टैंड वी आर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी। कि अगर हम एक चीठी को भी भगवान के धाम जाने का रास्ता दिखाएं, ये हमारा कर्तव्य है। ये एक भक्त को इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो महात्मा विदुर भी देखिए उसी प्रकार से भगवान के भक्त, कैसे धृतराष्ट्र जी युद्ध को हारने के बाद भी उसी महल में रहते थे, भीम जिसको मारने का उन्होंने प्रयत्न किया उसी के हाथ से खाते थे, वो रोज भोजन लेकर आते थे। और विदुर जी ने भी आशा नहीं छोड़ी, वो पहले भी समझाते रहे धृतराष्ट्र को और बाद में भी वापस आए, चाहे दुर्योधन ने अपमानित करके भेज दिया था लेकिन फिर भी वापस आए धृतराष्ट्र को बदलने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए। तो भगवान और उनके संपर्क में उनके भक्तों का एक विशेष स्वभाव है कि वो हर जीव को बदलने का अवसर प्रदान करते हैं और ये भगवान की कृपा से ही संभव है। एक बार एक मारवाड़ी सेठ जी थे कलकत्ता में, जब प्रभुपाद वहां प्रचार करने पहुंचे तो प्रभुपाद से मिले और पूछा, स्वामी जी आपने ये सब कैसे किया? तो प्रभुपाद को पहले समझ में नहीं आया क्या पूछ रहा है, तो उसका मतलब था कि भी आप 40 रुपए लेकर गए थे, ये सब कैसे किया आपने, ये सब आपने कैसे किया? तो प्रभुपाद ने कहा हम गया, तो प्रभुपाद से हिंदी में बात करते हैं, मैं हम गया करताल लिया, पेड़ के नीचे बैठा और हरे कृष्णा गाने लगा और सब हो गया। तो उसको समझ में नहीं आया वो कहता है नहीं नहीं स्वामी जी कैसे हुआ ये सब, वो समझना चाहता था कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कैसे हो गया ये 40 रुपए से ये हो कैसे गया। तो प्रभुपाद ने फिर वही बात दोहराई, हम गया करताल लिया पेड़ के नीचे बैठा और बजाया और गाया हरे कृष्णा और हो गया। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रही बात, वो कहता नहीं नहीं स्वामी जी लेकिन हुआ कैसे ये सब। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ भावना से कृष्ण के लिए कुछ करना चाहें तो हमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी उस इच्छा को देख के कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करते हैं उसे संपन्न करने के लिए। तो भक्ति में ऐसा हो सकता है कि हमारी सीमाएं हैं लेकिन भगवान एक भक्त की शुद्ध इच्छा को देखते हुए उसे असीमित मात्रा में भगवान की सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये भगवान की करुणा है और कृपा है, लेकिन अगर हम भक्ति में इस बात के लिए ग्रेटफुल ना हो जो हमें भगवान के संपर्क में आने से मिला है, प्राप्त हुआ है, या भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधियों के प्रभुपाद जैसे उनके आश्रय में आने से जो हमें प्राप्त हुआ है, अगर हमारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता की भावना ना हो तो यह हमारी भक्ति में प्रगति को रोक देता। एक स्तर तक भक्ति में प्रगति हमारे पूर्व पुण्यों से होती है लेकिन एक स्तर के बाद रुक जाती है क्योंकि हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो हम भक्ति में कर रहे हैं या जो प्राप्त किए हैं ये हमारी ग्रेटनेस नहीं है, इसमें हमारी कोई महानता नहीं है। तो जिस स्तर तक कोई कृतज्ञ रह पाता है गुरु वैष्णव और इस परंपरा के, उस हद तक वो इस भक्ति के पथ पर प्रगति करता जाएगा। और जैसे ही ये कृतज्ञता जाती है मन से और ये माया मन में विचार देती है हमारी विशेषताओं का जो कि उधार मांगी गई है, तो वहीं से ये प्रगति थम जाती है। तो जो भक्तों का आश्रय है इस भक्ति में वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कैसे गजेंद्र ने का जो आश्रय लिया उस ग्राह ने, तो वो ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा था और गजेंद्र भगवान की प्रार्थनाओं का गान कर रहे थे। तो भगवान ने आके सबसे पहले उस ग्राह को मुक्त किया सुदर्शन से, बाद में गजेंद्र को मुक्त किया। तो पहले ग्रह की मुक्ति हुई, फिर बाद में गजेंद्र की मुक्ति हुई। तो उस ग्रह की मुक्ति क्यों हुई? क्योंकि उसने गजेंद्र का के चरण का आश्रय ले लिया, पैर को पकड़ के बैठा था, चाहे अनफेवरेबली था। तो अगर कोई इस भावना से भी किसी भक्त के पैर को पकड़ के बैठा है तो भगवान उसको परिणाम दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा फेवरेबली कर रहा है, ऐसी भावना से जो अनुकूल है, तो उसको क्या परिणाम मिल सकता है? तो कोई किसी भी भावना से भगवान के संपर्क में आया, ये बात निश्चित है कि उसका उद्धार होगा। जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं ये चिंता नहीं कर रहा कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, मैं दूसरों के विषय में सोच रहा हूं जो आपके आश्रय में नहीं है। तो ये बात निश्चित है कि जो भी चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आया है, एक ना एक दिन किसी ना किसी जन्म में आकर उसका उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन स्वार्थी लोगों का आंदोलन नहीं है, ये ऐसे लोगों का आंदोलन है जो अपने लिए जीवन नहीं जीते। क्योंकि जो भगवान के लिए जीवन जिए, उसे अपने लिए जीवन जीने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने लिए जीवन वो जीते हैं जो स्वार्थी हैं। भक्त भगवान के लिए जीवन जीते हैं, और जब वो भगवान के लिए जीते हैं तो वो भगवान की जिम्मेदारी बन जाते हैं। जैसे रामानुजाचार्य जी से पूछा उनके शिष्य ने आके कि गुरुदेव, अगर हम पूरा जीवन अभ्यास करें भगवान का स्मरण करने का, और अंत काल में कुछ ऐसा हो कि हमें भगवान का स्मरण ना आए, तो फिर क्या होगा? जैसे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें किसी मंत्र का अभ्यास करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, नरसिंह स्त्रोत्र, ब्रह्म संहिता की प्रार्थनाएं, जैसे महाराज इंद्रद्युम्न ने की अपने पूर्व जन्म में, और इस जन्म में गजेंद्र के शरीर में आके, पशु के शरीर में आके भी वो उसे याद कर रहे थे और उसकी स्मृति कर रहे थे, जिससे वो भगवान को आकर्षित कर पाए उस पशु देह में भी। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर कोई अपना जीवन भगवान के लिए जिए और अंत काल में उसे भगवान स्मरण ना भी आए, तो वो भगवान को स्मरण ना कर पाए, तो ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि भगवान उसे अपनी स्मृति देते हैं। जैसे एक भक्त, वो मायापुर से कलकत्ता आ रहे थे वैन में, और उनकी वैन पलट गई, कई बार पलटी, और पलट के जो शीशे से टूट के बाहर गिरे तो उनकी गर्दन कट गई थी और खून बह जा रहा था, और कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय को, सब कुछ अंधेरा आंखों के आगे जा रहा था। तुरंत अचानक उनके सामने उनकी नजर पड़ी कि एक नियॉन साइन बोर्ड, और उसमें क्या हाईलाइट हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र स्क्रॉल कर रहा था। तो अगर कोई भगवान के लिए जिए और अंतकाल में किसी कारण से वो भगवान की स्मृति ना भी प्राप्त कर पाए, तो ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। फ्रांस में एक प्रभुपाद जी के शिष्य होते थे, वो सन्यासी बने और प्रचार करने लगे पेरिस के अंदर, जो कि माया का बड़ा प्रभाव था। तो प्रभुपाद जी जब तक थे बहुत उत्साह से प्रचार करते रहे, लेकिन जब प्रभुपाद जी त्याग के गए इस संसार को, वो भी माया में वापस चले गए। अंत समय में वो आईसीयू के अंदर थे और एक कर्मी का जीवन जी रहे थे, और सब ट्यूब्स लगी हैं, फूड पाइप्स लगे हैं, सब मीटर्स लगे हुए हैं, उठ नहीं सकते अपने आप, बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, सब पाइप के साथ एकदम बेड पे खड़े होकर बैठ गए और कहते हैं, ओ प्रभुपाद यू हैव कम, और ऐसा कह के धड़म करके गिरे और आखिरी सांस ली। तो ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है, जो भगवान के लिए जीवन जीते हैं उन्हें अपनी स्मृति देना। रशिया में एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे और उनको कोई रोग हो गया बड़ा, और यंग एज में ही बहुत बीमार हो गए, और वो भी इसी तरह से बड़ी ऐसी अवस्था में थे कि प्रैक्टिकली कोमा की जैसी स्टेज थी शरीर छोड़ने से पहले, कि कुछ बाहर चेतना नहीं, और ऐसी स्टेज में अपने बेड से खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे, प्रभुपाद हैज नॉट चीटेड अस, प्रभुपाद हैज नॉट चीटेड अस, प्रभुपाद हैज नॉट चीटेड अस, तीन बार बोला और श्वास त्यागे और धाम चले गए। तो ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। तो यही आध्यात्मिक शक्ति का स्वभाव है। भौतिक शक्ति का जितना हम संग करते हैं वो नीचे खींचती है हमें, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। इसी तरह से हमारे जीवन के मूल्यों को, इस नियमों को, सिद्धांतों को वो क्षय की ओर लेकर जाती है। तो आरंभ में भक्तों में बहुत कृतज्ञता रहती है कि जो उनको जीवन में मिला है, लेकिन धीरे धीरे इतना सामान्य बन जाता है कि हम सब भूल जाते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ क्या था और हमें कितना सुंदर मार्ग बिना हमारे किसी योग्यता के हमें मिला। तो ये भौतिक शक्ति का स्वभाव है, ये हमारे सारे मूल्यों को क्षय करती है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का स्वभाव है कि हमें ऊपर की ओर उठाती है। तो कृष्णा, कृष्ण मतलब आकर्षक, ना मतलब जो ऊपर उठाए, जो अपलिफ्ट करे। तो भगवान और उनसे संबंधित कार्य हमें ऊपर की ओर उठाते, यह आध्यात्मिक शक्ति का स्वभाव है। कि प्रभुपाद ने कैसे इस भगवान के नाम और इस आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क से सैन फ्रांसिस्को में एक मॉर्चरी को, शव ग्रह को मंदिर बना दिया, जहां पे शव को काट के खून निकाला जाता था वो किचन है, जहां पे शवों को रखा जाता था वो अल्टर है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का स्वभाव है कि एक मृत स्वस्थान में जीवन दे दिया प्रभुपाद। यही नहीं, मॉन्ट्रियल में बॉलिंग एले को मंदिर बना दिया प्रभुपाद ने। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है कि जिसके स्वभाव से हम हमेशा ऊपर की ओर उठेंगे। तो इस भक्ति के जीवन में हमारा ये कॉन्शियस अटेम्प्ट होना चाहिए कि हम कितना स्पिरिचुअल एनर्जी के एसोसिएशन में, यानी कि ये शब्द ध्वनि भागवतम की, गीता की, हरिनाम की, ये शब्द ध्वनि, अन्यथा इस संसार में प्रत्येक कारण है कि हम जितना भी भक्ति का अभ्यास क्यों ना करें, जैसे ही हम माया के करीब जाएंगे ये आकर्षित करती है, ये खींचती है हमें अपनी ओर। तो इसलिए अपने आप को घेर के रखना चाहिए, डुबो के रखना चाहिए ऐसे कार्यों से, एक अवसर नहीं देना चाहिए इस माया को प्रवेश करने के लिए। जैसे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, और वो पिक्सल्स जितने महीन होते हैं उतनी इमेज शार्पर नजर आती है, यानी कि जितना कम स्पेस, कितना कम गैप होगा उतनी इमेज रेजोल्यूशन उतना हाई नजर आएगा। तो उसी तरह से इस मन में भी पिक्सल्स हैं छोटे छोटे, एक तरफ गुरु एक तरफ माया, एक तरफ गुरु एक तरफ माया। अब जितने पिक्सल्स गुरु और कृष्ण के होंगे उतना कम स्थान बचेगा माया के पिक्सल्स के लिए, और जितने कम पिक्सल्स गुरु और कृष्ण के होंगे उतने ज्यादा पिक्सल्स माया के रहेंगे। किसी ना किसी का पिक्सल तो होगा ही, वो एम्प्टी नहीं हो सकता, उसको उस स्पेस को भरा हुआ होगा, होना होगा। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमें हमारी वास्तविक जो पोजीशन है दास की वो सिखाता है। श्रील प्रभुपाद ने लंदन में एक यंग बॉय को दीक्षा दी और कहा तुम्हारा नाम है आज से किशोर दास। उसने कहा स्वामी प्रभुपाद जी इसका मतलब क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं किशोर मीन्स एंजॉयर ऑफ वृंदावन विद गोपीज। और ये कहते हैं वाह, प्रभुपाद कहते हैं बट यू आर हिज सर्वेंट, लेकिन तुम उसके दास हो ये मत भूलना। श्री कृष्ण भावनामृत हमें भगवान की सेवा करने का अवसर देता है बिना किसी योग्यता के। एक बार अम्बरीश प्रभु प्रवचन कर रहे थे एल्फ्रेड फोर्ट और वो कहते हैं आई डोंट डिजर्व टू बी सेव्ड बट प्रभुपाद सेव्ड मी। एक्चुअली वी ऑल डोंट डिजर्व टू बी सेव्ड बट प्रभुपाद एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स हैज सेव्ड अस। उन्होंने हमें ये अवसर देके बचाया है इस माया के संसार से। तो जब कृपा मिलती है हमें इस कृपा के मार्ग पे इस भक्ति योग में, तो इसे हम अपनी महानता ना मान बैठे। तो हम सब बाय प्रोडक्ट्स हैं भगवान और उनके भक्तों के प्रयत्नों के, ये हमारी कोई योग्यता नहीं। जैसे सुग्रीव भूल गए जब भगवान राम ने उनकी सहायता की वाली को मारने में, और सुग्रीव ने बदले में कहा था कि मैं सीता की खोज में सहायता करूंगा। तो 4 महीने बीत गए, सुग्रीव राजा बन गए किष्किंधा के और वो अब भोग में लगे और पूरी तरह से भूल गए कि सहायता करनी थी भगवान राम की, सीता जी की खोज के लिए अपना वचन भूल गए। तो लक्ष्मण जी याद दिलाने आते हैं। तो उसी तरह से जब जीव भूल जाता है कि उसकी उत्पत्ति भगवान के सहयोग के लिए की गई है, तो लक्ष्मण यानी गुरु हमारे जीवन में आके हमें याद दिलाते हैं कि इस जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है। और अगर हम ऐसे प्रमाणिक गुरु के आश्रय में आके उस रास्ते को प्राप्त करके भी भूल जाए कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो फिर पुनः मूषिका भव, भगवान फिर हमें अलग तरीके से सिखाते हैं। जैसे एक बार वो बालाजी की हुंडी जब खुलती है, उसकी काउंटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग लगते हैं कि 1 करोड़ रुपए रोज का दान आता है हुंडी में। तो एक बार एक व्यक्ति को भी अवसर मिला काउंटिंग करने का, और काउंट करते 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 उसे उसमें एक बड़ी अद्भुत रिंग नजर आई हुंडी के अंदर। हालांकि बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, सीसीटीवी सब कुछ, लेकिन किसी तरह से करके उसने उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया उस डायमंड रिंग को। और जब गया वहां से मंदिर से बाहर काउंटिंग सेवा के बाद, तो जाके उसने कहा इधर नहीं दिखाऊंगा तिरुपति के अंदर, किसी को नहीं दूंगा, बाहर जाता हूं किसी मार्केट में, चेन्नई गया। जिस ज्वेलर के पास जाए सब बोले हम नहीं खरीद सकते इसको, ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम पे नहीं कर सकते आपको। वो सारे उसने शहर के ज्वेलर्स को छान लिए, लेकिन हर एक ने रिफ्यूज करा कि ऐसा एक्सपेंसिव स्टोन है, ये ऐसा डायमंड है जिसकी कॉस्ट हम पे नहीं कर सकते। करते करते बॉम्बे पहुंच गया, उसने सोचा शायद बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, यहां पर कुछ अवसर मिल जाए, यहां पर कोई खरीद लेगा। बॉम्बे में भी कई ज्वेलर्स के पास गया, सबने रिफ्यूज कर दिया। अंततः वो गया सबसे फेमस ज्वेलर के पास, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी। और जब उसके पास गया तो उसने जाके काउंटर पर दिखाया कि ये रिंग मैं बेचना चाहता हूं और मुझे इसके बदले में पैसा चाहिए। तो जब उसने देखा सेल्समैन ने, तो उसने कहा तो बहुत हैवी है, तो कहा हमारे आप सर से मिलिए, और कैबिन में ले गया जो ओनर थे उस शॉप के। तो त्रिभुवनदास भाई जी के पास ले गया, उनके सामने बिठा दिया टेबल पे, और जब उन्होंने रिंग को देखा तो उन्होंने कहा आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको पे करेंगे इसके लिए, और वो बाहर गए। इतनी देर में पुलिस अंदर आ गई, वो उन्होंने ही डाली थी जो वापस उन तक आ गए। तो हम भगवान की कृपा प्राप्त करके अगर ये सोचें कि हम महान हो गए हैं, तो भगवान तरीका जानते हैं हमें सीधा करने का, पुनः मूषिका भव, फिर से पकड़े जाएंगे। तो इसलिए हर समय अगर हम इस बात को याद रखें, इस ग्रैटिट्यूड की भावना को रखें कि हमारी अनेक अयोग्यताओं के बावजूद हमें गुरु और कृष्ण ने अवसर दिया है अपने इस जीवन को सिद्ध करने का, तो इसका एक एक क्षण हमें इस भावना के साथ, इस कृष्ण भावनामृत में व्यतीत करना चाहिए, और यह हमारी प्रगति को कई गुना एक्सेलरेट कर देता है। हरे कृष्ण। हाजी ले सकते 9 बजे। कोई एक प्रश्न?
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद भाजी आपके सुंदर दर्शन के लिए। भाजी आपने बताया था कि जीव माया और कृष्ण को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। जब हम बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं और भौतिकवादी लोगों से मिलते हैं, तो उनका संग तो माया की तरह है, और हम प्रचार भी कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान भी कर रहे हैं, तो कैसे?
तो जब हम भगवान की सेवा के लिए ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो भक्त नहीं है, तो प्रचारक मतलब वो प्रभाव देने के लिए गया है, प्रभाव लेने के लिए नहीं गया। हालांकि ये रिस्क है, लेकिन इस रिस्क में हम सफल रह सकते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि कबड्डी के खेल की तरह, अब कबड्डी के खेल में अगर एक व्यक्ति दूसरी टीम के पास जाता है उनको छूने के लिए, तो अगर वो दुबला पतला हो तो सब पकड़ लेंगे उसे, लेकिन अगर वो शक्तिशाली हो तो क्या करता है, आओ 2 यहां लटकते हैं, 2 यहां लटकते हैं, 4 पीछे से पकड़ते हैं, 3 आगे से पकड़ते हैं, सब सारी टीम पकड़ लेती है, और फिर वो घूम जाता है सबको लेके अपनी तरफ। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही किया कि सीधा माया की नगरी न्यूयॉर्क पहुंच गए और बोला आओ पकड़ लो, और लिया और मूव कर गए कृष्ण की ओर सबको ले। तो मतलब प्रचार मतलब हमें स्वयं को शक्तिशाली होना होगा, हम स्वयं को मजबूत होना होगा। तो इसीलिए एक साधक जब भगवान की सेवा करता है, जो भी परफेक्ट नहीं है, वो साधना भक्ति वैदिक भक्ति के पालन में, तो उस समय उसे बैलेंस करना बहुत आवश्यक, उसका खुद का श्रवण कीर्तन और फिर बाकी समय लोगों को यह सिखाना। लेकिन अगर वो सिर्फ सेवा में ही लगा रहे और अपने श्रवण कीर्तन और अपनी साधना पर ध्यान ना दे, तो इसका मतलब है वो दुबले पतले खिलाड़ी की तरह, तो वो जाएगा दूसरों को पकड़ के लाने के लिए, लेकिन वो खुद ही पकड़ा जाएगा। तो इसलिए संतुलन बहुत आवश्यक है इस भक्ति पथ पे। तो अगर हम ये संतुलन करके चलें, तो फिर प्रभुपाद और वैष्णवों की कृपा से, क्योंकि जो हम प्रचार करते हैं इसलिए नहीं कि हम सिद्ध हो गए, ये प्रचार हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब हम कृष्ण के बारे में सब कुछ सर्विस करते हैं, कृष्ण के विषय में कुछ बताते हैं, तो सबसे ज्यादा बताने वाले को लाभ हो रहा है, सुनने वाले को भी लाभ हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्मरण, सबसे ज्यादा कृष्ण भावना भावित बताने वाला है। अब मान लीजिए कि हम आश्रम में ही रहे सारा समय, तो फिर क्या होता है कि हमें एक दूसरे की कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है, प्रोसेस की कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है, मैनेजमेंट की कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग कितना कष्ट का जीवन जी रहे हैं, और तब समझ में आता है कि हमें क्या मिला है, और हमारी जो प्रशंसा है उसके प्रति जो हमें दिया गया है और बढ़ जाती है, कि हम कितने सुरक्षित हैं और कितने बचे हुए हैं ऐसे जीवन से। तो उस परिस्थिति में ये हमारी जो हमें प्राप्त हुआ है उसके प्रति हमारी प्रशंसा को बढ़ाता है, हमें भक्ति में प्रगति करने का सहायता देता है और ये हमारा एक प्यूरिफिकेशन है। लेकिन कॉन्शियस को ठीक रखना बहुत जरूरी है ऐसे समय कि ये मैं इसलिए नहीं कि मैं कृष्ण भावना भावित हो गया हूं कर रहा हूं, मैं ये होने के लिए कर रहा हूं, तो दिस इज पार्ट ऑफ माई साधना, ये मेरी साधना का अंग है। और जो मुझे इस सेवा के करने से प्राप्त हो रहा है, चाहे वो यश है चाहे वो कोई भौतिक लाभ है, ये दोनों के दोनों जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये गुरु और कृष्ण को मुझे वापस लौटाना है। तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, एक पोस्टमैन की तरह, तो संदेश लेकर मैं इनके लिए आया हूं और इनके द्वारा जो भी ये रेसिप्रोकेशन में दे रहे हैं वो मैं कृष्ण के लिए वापस लेकर जा रहा हूं। लेकिन अगर हम बीच में एंजॉयर बन जाए और ये मान बैठे कि ये मुझे दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ माई एबिलिटी इट्स हैपनिंग, मैं प्रभावित कर पा रहा हूं, तो यस माया प्रभाव कर रही है, तो इसका मतलब फिर हमें वहां से विड्रॉ कर लेना चाहिए। और कई बार हमें रहते हुए समझ नहीं आता कि हम खींचते हुए जा रहे हैं माया की, माया में रहते हुए कोई अपने आप को नहीं देख सकता, ये बाहर जो है वो देख सकता है। तो इसके लिए फिर हमें निरंतर मार्गदर्शन चाहिए वरिष्ठ वैष्णवों से, कॉन्टिन्यूअसली मार्गदर्शन चाहिए, ताकि अगर कहीं पर हम गलती कर रहे हो जो हम खुद ना देख पा रहे हो तो वो हमें देखकर बाहर निकाल सकते, तो ये हमें सुरक्षित रखता है। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा राधिका रमन की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्रील प्रभुपाद की, गताई गौर प्रेमानंद की।